हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। और क्या तुम्हें मेरा प्यार मेरी आंखों में दिखाई नहीं देता? ये सब चीप हरकतें मुझसे नहीं होती, तुम अच्छी तरह जानती हो। और ये क्या पहन रखा है तुमने? रात का समय है, सोने का टाइम है, इस वक्त इतने भारी कपड़े पहनकर सोओगी तो बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ सकता है ना। और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे पर किसी तरह का कोई असर हो। अब आप जाइए और फटाफट कपड़े चेंज करके आइए। जैसे ही अमन ने ये कहा, तारा मुस्कुराते हुए जल्दी ही कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। वहीं अमन सीधा अपने कमरे से निकलकर बाहर आया। उसके दिमाग में कुछ हल्की हल्की यादें थीं और बाकी सब कुछ वो भूल चुका था। कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा था। आखिरकार वो इस तरह से अपने जिस्म पर से कंट्रोल कैसे खो सकता था? कहीं ना कहीं उसे भी शक होने लगा था कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए वो अपनी माँ के पास आया। माँ के पास आया तो करिश्मा जी उस वक्त बैठी हुई अमन के बारे में ही सोच रही थी और कहने लगी, मेरे बच्चा अमन, तू मेरे पास फिर से? अभी तो तू मेरे पास से गया था और तूने मुझसे कहा था कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। तब करिश्मा जी की बात सुनकर अमन हैरान हो गया और कहने लगा, मॉम, आपको क्या हो गया है? मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत थोड़ी ना है। आप कैसी बातें कर रही हैं? जैसे ही अमन ने करिश्मा जी को ये कहा, करिश्मा जी हैरान हो गई और कहने लगी, बेटा, तुझे क्या हो गया है? तभी अमन अपने सर पर हाथ मारते हुए कहने लगा, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कुछ यादें कहीं खोई हुई हैं, मुझे ढंग से कुछ याद नहीं है। तभी करिश्मा जी हैरानी से अमन की ओर देखकर कहने लगी, मुझे भी तेरे साथ कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। जिस तरह से तू तारा बेटी के बिना एक पल नहीं रह रहा है, हर बार उसे परेशान कर रहा है, कितनी बार तो उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, वो भी ऐसी हालत में, मुझे भी तुझ पर शक हो रहा है, तेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या क्या क्या? जैसे ही अमन ने ये सुना वो पूरी तरह से हैरान हो गया और कहने लगा, आप ये क्या कह रही हैं मॉम? क्या मैंने तारा को इस तरह से परेशान किया है? तब करिश्मा जी कहने लगी, क्या बेटा, तुझे वाकई कुछ याद नहीं है? तूने तारा के साथ चार चार बार दिन में संबंध बनाया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा उदास हो गई है। अब अमन पूरी तरह से हैरान हो गया और जल्दी से दौड़कर तारा के कमरे की ओर जाने लगा। लेकिन इस बीच अमित अमन का बर्ताव देखने के बाद समझ चुका था कि अमन को जरूर कुछ ना कुछ याद आ रहा है और वो सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा होगा। तो इसीलिए जल्दी से उसने अपने कमरे में जाकर लाल रंग की जो शीशी रखी हुई थी, जिसमें उसने अपने दानव को कैद करके रखा हुआ था, उस पर कुछ मंत्र का उच्चारण करके उस दानव को एक बार फिर अमन के पीछे भेज दिया और वो दानव का साया एक बार फिर अमन को छूकर वापस आकर उसी लाल रंग की शीशी में कैद हो गया और अमन एक बार फिर एक फ्लर्ट अमन बन चुका था। तारा अमन के बर्ताव को लेकर एक बार फिर परेशान हो चुकी थी। तारा सोचने लगी थी कि काश मैंने रीत परी को इस तरह से पृथ्वी लोक देखने के लिए नहीं भेजा होता, तो अभी और इसी वक्त मुझे पता चल जाता कि आखिरकार अमन के साथ हुआ क्या था और अचानक से उसके बर्ताव में तब्दीली कैसे आई। कहीं ना कहीं तारा ये सब सोच रही थी, लेकिन तब तक अचानक अमन थोड़ा सा आगे बढ़ चुका था और तारा के होंठों को चूमकर कहने लगा था, क्या हुआ है मेरी जान, क्या सोच रही हो तुम? तुम जानती हो तुम्हें एक पल भी देखे बगैर ऐसा लगता है मानो सदियां हो गई हो। जैसे ही मैं तुम्हें देखता हूँ, ना जाने तुम में ऐसा क्या है, बार बार दिल करता है कि बस तुम्हें देखता रहूं देखता रहूं। ऐसा कहकर अमन एक बार फिर शायराना अंदाज में तारा से बातें करने लगा और तारा ने सोचा कि उसे भी अमन की लैंग्वेज में ही जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर वो अमन के साथ विपरीत बातें करेगी, उल्टी बातें करेगी, तो अमन भड़क सकता है और हो सकता है कि उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करे। तारा ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अमन के पास कितनी सारी असीमित शक्तियां थीं, तो वो आसानी से तारा को चोट पहुंचाने की ताकत और हिम्मत दोनों ही रखता था। और क्योंकि अमन अपने वश में नहीं था, तो इसीलिए तारा को इस वक्त धैर्य से काम लेना था। अमन को अपने कब्जे में कौन सी काली शक्ति कर रही थी, क्योंकि बीच बीच में अमन एक बार फिर नॉर्मल बन जाता था। अब तारा को यही पता लगाना था कि आखिरकार वो क्या था और कहाँ से आ रहा था और क्या वाकई उसे काली शक्तियों का मालिक अमित भेज रहा था, और अगर भेज ही रहा था तो कहाँ से भेज रहा था। कहीं ना कहीं वो लाल रंग की शीशी तारा परी की आंखों में थी और उसे वो रीत परी के जहन में भी डाल चुकी थी। रीत परी रस के बारे में भी तहकीकात करे, लेकिन फिलहाल रीत परी का एक्साइटमेंट था कि वो पृथ्वी लोक देखना चाहती थी, तो इसीलिए तारा ने सोचा कि कल से भी वो काम करेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज वो किसी न किसी तरह से अमन को मैनेज कर ही लेगी। और इसी बीच तारा का अंदेशा बिल्कुल ठीक निकला था। थोड़ी ही देर बाद प्यार भरी बातें करने के बाद तारा को एहसास हुआ मानो कि अमन सो गया है, और जैसे ही तारा ने देखा उसने राहत की सांस ली और बड़े ही ध्यान से वो अमन के चेहरे को देखने लगी। अमन सोया हुआ बहुत ही ज्यादा क्यूट और हैंडसम लग रहा था। एक बार को तो तारा का दिल किया कि वो खुद ही आगे बढ़कर अमन के साथ संबंध बना ले, लेकिन फिर खुद ही उसने अपने सर पर एक हल्के से चपत लगाते हुए कहा, मैं इस तरह से सोच भी नहीं सकती, अभी अमन ठीक नहीं है, अगर वो ठीक होता तो उसके साथ मैं एक बार तो क्या 100 बार तक संबंध बना लेती, आखिरकार वो उसका पति था, उसकी मोहब्बत था। लेकिन इस तरह से किसी और के वश में आकर उसके साथ संबंध बनाना तारा को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। वे जल्दी ही तारा ने अमन को एक तरफ लेटा दिया और खुद उसके ठीक बराबर में लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। वहीं रीत परी जल्दी ही पृथ्वीलोक पर अपने पंख फैलाकर इधर उधर उड़ने लगी। उसे सब कुछ बहुत ही ज्यादा प्यारा और खूबसूरत लग रहा था। उसने पहली बार इस तरह से इंसानों की दुनिया देखी थी, वहां पर किसी का छोटा किसी का बड़ा इस तरह के घर थे। वो देखकर रीत परी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। वो कभी किसी के घर पर जाकर बैठ रही थी, कभी किसी के घर पर। इस तरह से रीत परी अच्छी तरह से चारों तरफ घूम फिर लेने के बाद वापस से अमन के बंगले में लौट आई और वहां लौट आने के बाद उसने मन ही मन में तारा से बात करने का फैसला कर लिया था। लेकिन तारा उस वक्त अमन की बाहों में थी। हालांकि तारा अभी सोई नहीं थी, लेकिन उस वक्त वो अमन के पास लेटी हुई थी। लेकिन तभी उसे इस बात का एहसास हुआ कि रीत परी उससे बात करना चाहती है, तो उसने मन ही मन में उसे कह दिया, अब अपना काम शुरू कर और बड़े ही ध्यान से अमित के कमरे पर निगरानी रख और ये पता कर कि क्या उसके कमरे से कोई शक्ति या कोई जादू बाहर निकल रहा है जो कि आकर अमन को कच करता है या अमन को छूता है। तो रीत परी ने उसे कह दिया कि वो आज रात से ही अपना काम शुरू करेगी, उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर सोनम परी रात के दूसरे पहर गायब होकर सीधा अक्षत खुराना के बेडरूम में जा पहुंची, क्योंकि सोनम को अक्षत पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और खुद पर भी आ रहा था कि वो खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई थी।
तो इसीलिए उसने आज सीधे सीधे अक्षत से बात करने का फैसला कर लिया था और साथ ही साथ सोच लिया था कि अगर उसे अक्षत की यादें मिटाने के लिए अपने जादुई शक्ति का प्रयोग भी करना पड़े तो अपने जादुई शक्तियों का भी प्रयोग करेगी। वो अक्षत के दिल से उसकी सारी यादें मिटा डालेगी। कहीं ना कहीं इस इरादे के साथ सोनम परी जैसे ही अक्षत के बेडरूम में पहुंची तो उसकी आंखें हैरत के मारे खुली की खुली रह गई, क्योंकि अक्षत के बेडरूम का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां पर सोनम परी की तस्वीर ना हो। इतना ही नहीं, वहां पर सोनम परी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। हर तरफ, हर जगह, जिधर भी नजरें उठाकर देखती उधर सोनम परी को अपनी ही फोटोज नजर आ रही थी। और एक बड़ी सी फोटो के सामने अक्षत खड़ा होकर उसके होंठों को छू रहा था तो कभी उसके गालों को छू रहा था। जैसे ही सोनम परी ने ये देखा वो पूरी तरह से हैरान हो गई। एक पल को तो उसे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि उसकी इतनी सारी फोटो एक जगह मौजूद थीं और कोई उसे इतनी मोहब्बत करता था। लेकिन अगले ही पल उसे अपने अरमानों का गला घोटना था और वो इस तरह से इस सब चीज़ों को लेकर खुश नहीं हो सकती थी, क्योंकि इससे उसके लिए मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ सकती थीं। वैसे भी वो वहाँ सिर्फ और सिर्फ तारा परी की मदद करने के लिए आई थी, और अगर रानी माँ को इस बात की ज़रा सी भी भनक लग गई कि पृथ्वी लोक पर सोनम परी किसी से प्रेम करने लगी है तो वो इस वक्त उसे वापस बुला लेगी, क्योंकि इंसान से प्रेम करने की परियों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। तो इसीलिए कोई भी परी कभी भी किसी भी इंसान से प्यार नहीं कर सकती थी। तभी सोनम परी धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ने लगी थी, और क्योंकि उसे अक्षत के बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही थी और अक्षत सोनम की तस्वीर को देखकर कुछ कह रहा था, और जैसे ही सोनम थोड़ा सा अक्षत के करीब गई वो सुनना चाहती थी कि आखिरकार अक्षत उसकी फ़ोटो को देखकर क्या बोल रहा है। तो जैसे ही सोनम गई तो अक्षत कह रहा था, बहुत जल्द मैं सोनम को पालूंगा और उसे हमेशा के लिए अपना बना लूंगा और एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। इतना ही नहीं, दुनिया भर की सारी खुशियाँ उसे दूंगा। एक पल को अक्षत की बातें सुनने के बाद सोनम के चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई थी और उसके दिल में भी कुछ अजीब सी तितलियां सी उड़ रही थीं। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को शांत करते हुए अचानक अक्षत को पीछे से आवाज़ लगाई और कहने लगी, मिस्टर खुराना। जैसे ही अचानक सोनम मिस्टर खुराना कहा, अक्षत पूरी तरह से हैरान हो गया और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा कि सोनम परी खड़ी हुई थी तो अक्षत की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके कमरे का दरवाज़ा अभी भी लॉक था। तो अचानक से इतनी रात को सोनम वहाँ कैसे आ सकती थी, और वो भी इतने सारे सिक्योरिटी के बीच, क्योंकि अक्षत खुराना के बंगले की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की थी। इस तरह से सोनम का अंदर आना कहीं ना कहीं अक्षत को पूरी तरह से चौंका गया था, और वो उसकी ओर देख कर कहने लगा, तुम यहाँ बेडरूम में, मेरे बेडरूम में तुम यहाँ कैसे आ गई, और मेरा कमरे का दरवाज़ा तक नहीं खुला और लॉक भी अंदर से लगी हुई है, तो फिर तुम सीधा मेरे बेडरूम में कैसे आ सकती हो। जैसे ही अक्षत ने ये कहा, सोनम उसकी ओर देखकर कहने लगी, क्यों, क्या हुआ, घबरा गए ना देखकर, अब कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं कोई भूत प्रेत या चुड़ैल हूं जो अचानक से गायब होकर इस तरह से तुम्हारे कमरे में आ गई। वहां सोनम की बात सुनकर अक्षत थोड़ा सा चौंक भी गया था और पूरी तरह से हैरान भी था, लेकिन अगले ही पल खुद को थोड़ा सा नॉर्मल करते हुए कहने लगा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, एक्चुअली कमरे का दरवाज़ा बंद है और मेरे बंगले की इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है कि कोई उसे आसानी से फांद नहीं सकता है, तो अचानक से तुम मेरे कमरे में कैसे आ सकती हो। तभी सोनम अक्षत की ओर देखकर कहने लगी, यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा और तुम्हारा दूर दूर तक कोई मेल नहीं है, तो तुम इस तरह से मेरी ज़िंदगी में कैसे आ सकते हो। तुम्हारा मेरा कभी भी कोई भी रिश्ता कामयाब नहीं हो सकता है, तुम्हें ये बात गांठ बांध लेनी होगी, समझे तुम। और रही बात मेरे यहाँ आने की, तो मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हारे दिलो दिमाग से अपने प्यार की यादें मिटा सकूँ। जब जैसे ही सोनम ने ये कहा कि मैं यहाँ तुम्हारी यादें मिटाने के लिए आई हूँ, अक्षत के चेहरे का तो रंग उड़ रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार सोनम क्या कहने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने सोनम की ओर देखकर कहा, तुम कहना क्या चाहती हो, तुम मेरी यादें मिटा दोगी, आखिरकार हो कौन तुम? क्या तुम वाकई कोई भूत प्रेत या चुड़ैल तो नहीं हो? देखो, अगर तुम वाकई कोई चुड़ैल या आत्मा या भूत प्रेत भी हो ना, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या जवाब देगी सोनम अक्षत के इस प्रश्न का, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।